कृपया मेरी बात दोहराइए।
अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति सुश्रुम धीराणाम् इनस्तद्विच चक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् इनस्तद्विच चक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विच चक्षिरे।
तो ये श्लोक में बताया जाता है कि जो धीर पुरुष हैं धीराणाम, वो ये हमें बताते हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करने से एक गति की प्राप्ति होती है, एक परिणाम होता है, और अगर अज्ञान की अनुशीलन हम करेंगे तो परिणाम और ही कुछ हो जाएगा। जैसे आपको पता है, पिछली बार हम 9वां श्लोक कर रहे थे, उसमें हमें यह बताया गया था कि जो लोग अविद्या या अज्ञान का अनुशीलन करते हैं वो अज्ञान के अंधकार में पहुंच जाते हैं, और जो लोग वास्तव में जो अज्ञानी हैं पर अपने आप को ज्ञानी के रूप में पेश करते हैं समाज के सामने, और जो कि वास्तविक तथाकथित ज्ञान या तथाकथित विद्या का अनुशीलन करते हैं, वो तो इनसे भी और पतित हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अविद्या और विद्या में अंतर क्या है। ये बताया गया था कि विद्या का मतलब है ईशोपनिषद का पहले श्लोक का पूरी तरह से विश्वास होना। क्या है वो पहला श्लोक? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीत मा गृह कस्य स्विद्धनम्। इसमें यह हमें बताया जाता है कि भगवान परमेश्वर हैं और सब चीजों के मालिक हैं, सर्वलोक महेश्वरम, हमारा कुछ भी नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृह कस्य स्विद्धनम्। सिर्फ हमारे लिए जो हमारा कोटा भगवान ने रखा है, वो रखा गया है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बस जो व्यक्ति इस सत्य को पहचानता है, इसको जानता है अच्छी तरह से, और जो इस सत्य को अपने जीवन में उतारता है, वो ज्ञानी पुरुष है, और वो विद्या या ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। और जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं पहचानता, या तो फिर पहचानते हुए भी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अविद्या या अज्ञान के मार्ग में चल रहा है। ये दोनों का अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल सारे समाज में ज्यादातर लोग अज्ञान या अविद्या के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और कोई भी बाएं दाएं और देख नहीं रहा है, सीधे बहुत ही तेज गति से सारी दुनिया चले जा रही है नरक की ओर। क्योंकि आजकल सारे समाज में कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हम देखते हैं कि सच्ची विद्या क्या है ये किसी को नहीं बताया जाता, सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जाता है। जो सच्ची विद्या है उसके बारे में कहीं नहीं बताया जाता है। ये सच्चा ज्ञान क्या है, असलियत में विद्या क्या है, ये श्री कृष्ण भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं, भगवद गीता के 13वें अध्याय में, श्लोक नंबर 8 से लेकर 12। काफी लंबा है इसलिए मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसका अनुवाद जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो भगवान यहां विद्या या ज्ञान के 18 लक्षण बताते हैं। कृपया जरा ध्यान से सुनिएगा, और जिस व्यक्ति के पास ये 18 लक्षण हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये वास्तव में ज्ञानी पुरुष है या ये विद्या के मार्ग पर चल रहा है। तो आइए देखते हैं ये कौन से ऐसे गुण हैं या लक्षण हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। सबसे पहला है नम्रता, दूसरे नंबर पर है अभिमान से मुक्त रहना, तीसरा है अहिंसा, चौथा है सहनशीलता, पांचवा सरलता, उसके बाद सद्गुरु का शरण लेना, उसके बाद स्वच्छता, उसके बाद स्थिरता, फिर आत्मसंयम, उसके बाद इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं उनके प्रति वैराग्य रखना, तीसरी बात अहंकार से मुक्त होना, इसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार चीजें हैं यही हमारे जीवन में हमारे दुनिया में वास्तविक समस्याएं हैं ये जानना, फिर अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर से, अपने सारे जो धन दौलत से निरासक्त रहना, और सुख और दुख में एक समान रहना, और फिर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करना, जन साधारण से दूर रहना, अकेले कोई सुनसान जगह में जाकर भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयास करना, आत्म साक्षात्कार के महत्व को पहचानना, भगवान के लिए खोज करना, तो ये सारे लक्षण भगवान बताते हैं कि ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। और वो कहते हैं एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतो अन्यथा, कि ये जो मैंने बताए हैं यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो देखिए भगवान कभी ये नहीं कहते कि ज्ञान का मतलब है BA, MA, PhD हासिल करना। भगवान ये कहीं नहीं कहते कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो गया या संस्कृत का ज्ञान अच्छा हो गया तो आप ज्ञानी हो गए या पंडित हो गए। भौतिक दृष्टि से वो पंडित हो सकते हैं, बड़े बड़े उनके पास डिग्रियां हो सकती हैं, बड़े बड़े उनको समाज में पुरस्कार मिल सकते हैं, पर भगवान की दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं कहलाते जब तक कि उनके अंदर यह गुण या लक्षण नहीं प्रकट होते। देखिए भगवान सबसे पहली चीज क्या बताते हैं, नम्रता। पर जो व्यक्ति ज्यादा विद्वान हो जाता है, ज्यादा पंडित हो जाता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, मुझ में कितना ज्ञान है, कितनी मास्टरी है मुझे संस्कृत पे, मैं भगवद्गीता के सारे श्लोक जानता हूं, या मैं कितनी अच्छी तरह से प्रवचन दे सकता हूं, या मेरे कितने शिष्य हो गए हैं। तो अगर बाकी सब ज्ञान भी हो पर नम्रता नहीं हो तो फिर इनका क्या फायदा है। उसी तरह से एक एक करके हम देखते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान जो बता रहे हैं ये कोई गहरी बात बता रहे हैं। जो भौतिक लोग हैं जिनको भगवान में विश्वास नहीं है वो तो ये परिभाषा सुनकर वो हंसेंगे, इसे इसमें क्या है, नम्रता बनने में, नम्र बनने में क्या बड़ी बात है। पर जो व्यक्ति नम्र बनने का प्रयास करता है वो जानता है कि कितना मुश्किल है नम्र बनना। इसी तरह से ये सारे 18 चीजें जो करने हैं वो बहुत मुश्किल है, और जो व्यक्ति ये अपने हृदय से प्रयास करता है इन 18 चीजों को प्राप्त करने के लिए वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। और इन 18 चीजों में विशेषता है, एक बात हमें देखनी चाहिए, यहां भगवान बताते हैं मैं चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। वो बताते हैं कि जो सदैव मेरा अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भाव से जो भक्ति करता है, उसने सारे ज्ञान के सार को प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है उसे ज्ञान खुद ब खुद आ जाता है। ज्ञान या भक्ति प्राप्त करने का लक्षण यही है कि ज्ञान और वैराग्य और बाकी ये जो भी कुछ चीजें 18 चीजें हैं सब आ जाते हैं खुद ब खुद। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जो भक्ति है वो एक माता के समान है और जो ज्ञान और वैराग्य है वो तो पुत्री के समान है। तो जहां माता होती है वहां पुत्री अवश्य आती है। तो उसी तरह से ये श्लोक में बताया जाता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम, कि जिस व्यक्ति के पास वासुदेव भक्ति यानी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो गई है हृदय में, उसके लिए ज्ञान वैराग्य ये सब की चीजें मुश्किल नहीं है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाती है, कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो जिस व्यक्ति के पास भगवान के प्रति भक्ति है ये बाकी सारे लक्षण खुद ब खुद आ जाते हैं, उनके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है सच्चा ज्ञान। और इससे विपरीत जो भी है, इससे अलावा जो भी कुछ है वो अज्ञान है। पर आजकल ज्ञान के नाम में हम भौतिक जो हमारी विचारधारा है वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे परंपरा में एक महान आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े भौतिक यूनिवर्सिटी डिग्रियां हैं, ये जो ज्ञान है, ये वास्तव में क्या है? भगवान के माया शक्ति का एक बाहरी रूप है, बस इतना ही है। क्योंकि सारे समाज में इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है कि अच्छा आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है, वाह आपको तो टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिग्री मिल गई है, वाह आप तो डॉक्टर बन गए हैं, आपके पास MBBS है, आपके पास MD है, या आपने क्या कोई इतिहास में आपने MA किया है। तो ये जो क्या है, ये भौतिक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान वास्तव में है क्या? ये है सिर्फ माया का एक रूप। सुनने में काफी कठोर लगता होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब है कि जो भी कुछ आजकल दुनिया में चल रहा है, इंजीनियरिंग वो टेक्नोलॉजी जो सारे कुछ जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिखा रहे हैं वो क्या सब माया है? एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ माया शक्ति का एक बाहरी रूप है। बहुत ही आकर्षित रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अज्ञानी लोग इसको ज्ञान से ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी बन गए। वास्तव में ये अज्ञान है। और भक्ति विनोद ठाकुर यहां तक बताते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ ऐसे भौतिक विद्या का अनुशीलन करता है और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान यानी सच्ची विद्या का अनुशीलन नहीं करता, वो तो एक पशु बन जाता है, और उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये धर्म है, सच्चा धर्म है। और महाभारत में बताया गया है, धर्मे नहीं न पशु भी समाना, कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के मन में या जिस व्यक्ति जो व्यक्ति धर्म को नहीं पाल धर्म का पालन नहीं करता है वो पशु के समान है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि जो सिर्फ भौतिक विद्या के पीछे भाग रहे हैं और भगवान के बारे में कोई ज्ञान जानना नहीं चाहते हैं वो वास्तव में पशु की तरह हैं। तो चाहे उनके पास कितने बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो। तो आजकल सारे समाज में यही चल रहा है, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक नजर भी नहीं दे रहा है। लोग सोचते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा की बात है, ये तो पुराने जमाने की बात है, या ये तो ऐसी चीज है जो कि हमें बुढ़ापे में करना चाहिए, या ये ऐसा मार्ग है जो ये लोग अपनाते हैं जो कि दुनिया में फेल हो गए हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाए दुनिया में, और फिर दुनिया में ठोकर खा खा कर जो है वो यहां इस मार्ग पे चले आए हैं, या तो फिर ये मार्ग ऐसे लोगों के लिए है जो कि आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते और दो रोटी मुफ्त में कमाना खाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है। पर वास्तव में सत्य तो ये है कि मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है कि ये सच्ची विद्या को जान लेना। इसलिए यहां बताया जाता है कि ज्ञान के अनुशीलन से, सच्चे विद्या के अनुशीलन से एक परिणाम मिलता है, वो क्या है? हम ये भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति अज्ञान या अविद्या का अनुशीलन करता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये बंधन का मार्ग बन जाता है। बंधन कौन सा बंधन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, वो जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो एक है मुक्ति का मार्ग एक है बंधन का मार्ग, और अविद्या इसका मतलब है इंद्रिय तृप्ति। जब हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है और ये भूल जाते हैं कि वास्तव में हम आत्मा हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हमें ये भौतिक दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं वास्तव में, तो हम ये शरीर के इंद्रियां जो है इनको तृप्त करने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में महाराज ऋषभदेव उनके 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। वो बताते हैं, नायम देहो देह भाजाम्र लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, यार ध्यान से सुनना, ये जो मानव शरीर तुम्हें मिला है, आप लोगों को मिला है, उसमें आप इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल ना करना ये, क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति है ये तो जो नीच योनि में जो पशु हैं वो भी कर सकते हैं। जब तुमने ये तुम लोगों ने ये जो मानव शरीर प्राप्त किया है तो इसको सही ढंग से सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम यानी दिव्य तपस्या करनी चाहिए। किसके लिए, शुद्धेद यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भौतिक कलमशों से हमारा हृदय मुक्त हो जाएगा और फिर ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम, अनंत सुख का, आध्यात्मिक सुख का अनुभव हम कर पाएंगे, ये बताते हैं। पर जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं उनको क्या होता है, कष्टान कामान अर्हते विडभुजम ये बड़ा कष्ट होता है इसमें। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम समझते हो कि सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है। जो भी कुछ तथाकथित सुख ये इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है वो वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन दुख का कारण है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत भी होता है। इसलिए न तेषु रमते बुधः, जो वास्तविक बुद्धिमान पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, ये इंद्रिय सुख में रमण नहीं करते, इसके पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि वो सही ज्ञान उनको है कि इसके पीछे भागेंगे तो सिर्फ दुख भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अविद्या का मार्ग है इंद्र तृप्ति का मार्ग, और इस सारे दुनिया आजकल इंद्र तृप्ति को बढ़ाने में लगी है। अभी आप देखें जहां भी आप जाएंगे सब जगह इंद्र तृप्ति आपके सामने है, सब जगह है। चाहे आप यहां बड़े बड़े सिनेमा के पोस्टर देखेंगे, चाहे आप टेलीविजन चालू करें, चाहे आप कोई मैगजीन देखें, रेलवे स्टेशन पर इतने सारे मैगजीन दिखाई देते हैं, क्या क्या विषय के बारे में बातचीत करते हैं, यहां आजकल की फिल्म देखिए, आजकल की क्या बातचीत लोग करते हैं, कैसे कार्य में लोग लगे हुए हैं, सारी दुनिया जो है इंद्र तृप्ति में लगी हुई है। और ऐसे इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के से छुटकारा पाना चाहता है उसको भी खींच खींच कर वो ले आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति वैराग्य के मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कलयुग में, क्योंकि सारा वातावरण इतना दूषित है। पर भगवान की कृपा है कि उन्होंने ये कलयुग में भी एक साधारण मार्ग हमें दिया है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम व्रजेत। वो कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि ये कलयुग है ये दोषों का सागर है, इसमें तो अनंत दोष हैं, इतने दोष हैं कि गिन नहीं सकते, पर लेकिन अस्ति ही एक महान गुण, एक महान गुण ये कलयुग में है, और वो क्या है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, श्री कृष्ण का कीर्तन संकीर्तन, ये महान गुण क्यों है, क्योंकि मुक्त संग्रह परम व्रजेत। मुक्त संग्रह का मतलब है कि ये हमें सारे भौतिक बंधनों से छुटकारा दिला देगा, हमारे भौतिक हमारे हृदय को ये भौतिक कलमशों से शुद्ध करा देगा, और शुद्ध कराने के बाद फिर क्या होगा, परम व्रजेत, फिर हमें भगवान के धाम में ले जाएगा। तो इसलिए ये विद्या के मार्ग पर चलना, इसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, जहां पे हम आके भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान का शुभ उपदेश सुने, और फिर ऐसा उपदेश सुनने के बाद हमारे जीवन में हम इस उपदेश को उतारें। ऐसा करने से ज्ञान की अनुशीलन होगी, विद्या के मार्ग पर चलेंगे और फिर ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, सच्चे सुख का अनुभव हम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसलिए इस उपनिषद यहां हमें चेतावनी दे रहे हैं, यहां पर चेतावनी दी जाती है हमें कि खबरदार, अगर अविद्या के मार्ग पर जाओगे तो फिर देखना इसका परिणाम तो बुरा होने वाला है। इसलिए ये जान लो कि ज्ञान क्या है, विद्या क्या है और इसके मार्ग पर चलो, ये सारे जगत के कल्याण के लिए है। और जो पहला श्लोक है इस उपनिषद का, जो ईशावास्य मिलन सर्वम, यही भावना से हमारे जीवन हमें जीना चाहिए, यही ये श्लोक का तात्पर्य है। तो अभी इसके बाद 11वां श्लोक है, ये भी इस बात को आगे बढ़ाता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा,
विद्याम च विद्यम च यश तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते विद्यां च विद्यां च यस् तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते विद्यां च विद्यां च यस् तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते।
इस श्लोक में यह बताया गया है कि सिर्फ जो व्यक्ति जो कि ज्ञान और अज्ञान और विद्या और अविद्या को साथ विजय प्राप्त कर सकता है और फिर वो अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। अमृतम, अमृतम यानी अमृत अवस्था, अमर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसी बात क्यों बताई है, अब तक तो हम अज्ञान के प्रति इतना निंदा कर रहे थे और अभी यहां बताया जाता है कि ज्ञान के साथ साथ अज्ञान भी जानना चाहिए, अविद्या भी जानना चाहिए, ये कैसी बात है। तो देखिए, इसके पहले ये विचार कर लेते हैं, यहां बताया जाता है कि दोनों जो साथ साथ जानते हैं, ये दोनों मार्ग पर जो साथ साथ चलते हैं वो अमर बन जाते हैं। अभी अमर बनना या जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, इसके लिए अनंत काल से लोग प्रयास करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हरेक युग में हजारों हजारों सालों से ये प्रयास चलते आ रहा है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु की कथा आती है, भक्त प्रहलाद के पिता, उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी स्वयं, जो कि ये ब्रह्मांड के मुख्य व्यक्ति हैं, करता है इस ब्रह्मांड के, वो स्वयं नीचे उनको आना पड़ा और हिरण्यकशिपु को उनको वरदान देना पड़ा। हिरण्यकशिपु जो थे वो तपस्या इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए था, उनको ये दुनिया पे काबू करना था, इसलिए उन्होंने ऐसे भयंकर तपस्या की थी कि उनका सारा शरीर जो है वो बिल्कुल खत्म, वो सारा मांस, शरीर का मांस बिल्कुल खत्म हो गया था और कुछ भी नहीं रहा था। अनेक साल तक एक पैर पे खड़े थे, दोनों हाथ को ऊपर धारण करे हुए खड़े थे, इस तरह से ऐसी तपस्या की थी जो आजकल हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मुझे प्रभु बनना है, मुझे भोक्ता बनना है, मुझे नियंत्रणकर्ता बनना है। यह नहीं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है या मुझे हृदय शुद्ध करना है। जब महाराज ऋषभदेव की शिक्षा उनके पुत्रों को, जब उन्होंने श्लोक आपको बताया, उसमें दो शब्द कहे थे, तपो दिव्यम, तप करना चाहिए पर दिव्य, तपो दिव्यम, ये तपो असुरियम हो गया, असुरी भाव में तमोगुण का तप हो गया, क्योंकि इतना भयंकर तप करना और शरीर को इतना कष्ट देना, ऐसा तप भगवान के प्रति भक्ति हमारी नहीं बढ़ाएगी। तो हिरण्यकशिपु इंद्र तृप्ति के लिए तप कर रहे थे। और वास्तव में हिरण्यकशिपु का अर्थ यही है। हिरण्य का मतलब है सोना, गोल्ड, और कशिपु का मतलब है सोना, नींद का नाम। तो दोनों का मतलब है सोना, पर एक है गोल्ड और दूसरा है निद्रा। तो हिरण्यकशिपु को, वास्तव में कशिपु का मतलब है बहुत ही एक मुलायम जो है बिस्तर, यानी आराम से, ऐशो आराम का जीवन। तो हिरण्यकशिपु को यही चाहिए था। तो जब ब्रह्मा जी आए तो हिरण्यकशिपु ने बताया कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, कहे कि बाबा मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता, यह संभव नहीं है, कुछ और पूछो। तो फिर हिरण्यकशिपु सोचने लगे और उन्होंने पूछा कि ठीक है, मुझे आप ऐसे वरदान दो कि 84 लाख योनियों में से कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता, चाहे वो देवता हो, पशु हो, मानव हो, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। और ये भी वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो जल में होगी, ना तो जमीन पे, ना तो आकाश में, आसमान में। ये भी वर दीजिए कि मेरी मृत्यु है वो ना तो कोई अस्त्र से होगी, ना तो किसी के हाथ से होगी। मेरी मृत्यु ना तो दिन में होगी, ना तो रात में होगी, ना तो अंदर होगी, ना तो बाहर होगी। इस तरह से अनेक कंडीशन लगाए थे गए। वो सोच रहे थे कि अपनी बुद्धि से मैं इस तरह से योजना बनाऊंगा, अपनी बुद्धि से मैं भगवान को धोखा दे पाऊंगा और फिर मैं अमर बन जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है वही सही। पर उसके बाद में क्या हुआ? जब उन्होंने प्रहलाद को बहुत तंग किया, बहुत हैरान किया, तो स्वयं भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, प्रकट हुए और फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे वध किया? देखिए, पहले नरसिंह देव भगवान जो है ना, तो वो 84 लाख योनि में से नहीं है, और वो तो ना मानव के शरीर में थे, ना तो पशु के शरीर में थे। उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा पशु का था और नीचे का हिस्सा मानव का था। तो ना तो मानव है, ना तो पशु। तो फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठा लिया, ना तो जमीन में, ना तो आसमान में, ना तो पानी में। और फिर उन्होंने क्या किया, ठीक सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के थोड़े बाद, जबकि ना तो दिन है ना तो रात है, उस समय और कहां बैठे, उनके दरबार के घर के, उनके महल के सीढ़ियों पे बैठ गए, ना ही अंदर ना तो बाहर। और फिर उनको गोद में रखकर अपने लंबे लंबे नाखून से, नख से उन्होंने उनकी छाती फाड़ दी। नख है, ना तो हाथ है, ना तो अस्त्र है। इस तरह से भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, भगवान से ज्यादा चतुर कोई नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण्यकशिपु प्रयास कर रहा था कि मुझे अमर बनना है, और इतने सारे योजनाएं बना रहा था कि इतने सारे हजारों हजारों जन्म तक भयंकर तपस्या करने के बाद भी वो अमर नहीं हो पाया। और हिरण्यकशिपु तो आदि राक्षस है, आदि असुर, यानी सबसे पहला असुर और सबसे भयंकर असुर। तो जब हिरण्यकशिपु इतने हजारों सालों तक प्रयास करने के बाद, ऐसे तपस्या करने के बाद अमर नहीं हो पाया, तो आजकल के कलयुग के छोटे छोटे जो हिरण्यकशिपु हैं वो कैसे मृत्यु पे काबू पा सकते हैं? ये असंभव है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरिम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता। वो कहते हैं कि जिन्होंने ये राक्षसी और असुरी प्रवृत्ति का आश्रय लिया है, ऐसे लोग अनेक योजनाएं बनाते हैं, पर के सारे जो योजनाएं हैं, चाहे वो ज्ञान के लिए योजना बनाए, चाहे वो मुक्ति के लिए योजनाएं बनाए, चाहे वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए योजनाएं बनाए, आखिर में वो सब परास्त हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें योजना बनानी है तो हमें विद्या के मार्ग पर योजना बनाना चाहिए। अविद्या के मार्ग में जो भी हम योजनाएं बनाएंगे उसे हमें जानना चाहिए, कि शुरू से ही जानना चाहिए कि ये खत्म होने वाली है, ये असफल होने वाली है। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये असुरी मार्ग पे असुरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलता है। तो इंद्र तृप्ति का मतलब है असुर बनना। तो आजकल के लोग जो हैं सारे असुर हैं। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे कह रहे हो आप, अच्छे आदमी हैं सब, सब अच्छे करते हैं। अच्छा होना इसका मतलब क्या है? अच्छा होना इसका मतलब है ईमानदार होना। अगर मैं आपके घर में आकर आपकी चीजें उठाऊं और उसका भोग करने लगूं कि आप मुझे अच्छे आदमी कहेंगे, आप मुझे डाकू लफंगा कहेंगे और आपको घर से निकाल दूं मैं और आप में विश्वास न करूं और कहूं कि ये आपका घर नहीं है ये मेरा ही है, उसी तरह से ये तो सब भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम। और हम ये दुनिया में आकर बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, जनस्य मोहो यम अहम अमेति, सब कुछ मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पैसा मेरा है, गाड़ी बंगला मेरा है, ये परिवार मेरा है, पत्नी मेरे हैं, परिवार बच्चे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है और मेरा हक है भोग करने का। इसलिए 16वें अध्याय में भगवान जब आसुरी व्यक्ति का जो लक्षण बताते हैं तो देखिए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे सुनता है, कैसे सोचता है। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी कि वो और सब कुछ हो। इस तरह से ये भावना से असुरी व्यक्ति ये दुनिया का भोग उठाना चाहते हैं। कोई बहुत ही स्थूल रूप से भोग करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तो कोई बहुत सूक्ष्म रूप से, सिर्फ ये एक मात्रा का फर्क है बस। और जो भी लोग ये नहीं मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ जो दुनिया में है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, इनको शास्त्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग असुरी प्रवृत्ति के हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति असुरी भाव से हटना चाहता है उसको ये विद्या के मार्ग पर आना चाहिए। और ये विद्या के मार्ग का आने का मतलब है कि उसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा आरंभ करनी चाहिए, नहीं तो ये अमृत अवस्था ये प्राप्त करना असंभव है। पर जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है उसे यहां से मुक्त होना बहुत आसान बन जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे दिव्य जन्म और कार्य को जान लेता है श्रद्धा से तो वो व्यक्ति, उसके लिए यहां फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, जब ये देह को हम त्याग दे देते हैं तो पुनर्जन्म हमें नहीं लेना पड़ता, तो फिर कहां जाना पड़ता है? माम एति, मेरे पास आओगे अर्जुन, चिंता ना करो। इसीलिए हमें भगवान को जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम दैवी प्रकृति के हो जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। महात्मा लोग हैं उनको महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, दैवी प्रकृति, वो दैव प्रकृति के आश्रय लेकर वो दिव्य प्रवृत्ति के हो गए हैं। और क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, ये है महात्मा। और क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भूतादिम अव्ययम, ये जो भगवान है ये सारे प्राणियों के, सारे सारे प्राणियों के वो सबसे प्रथम है, वो प्रभु है, ये जान के अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये अगले श्लोक में हमें बताया जाता है कि ये दोनों साथ साथ हमें चलने चाहिए। अभी ये कैसे हो सकता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो हमने देखा है कि सिर्फ विद्या के मार्ग से जाने से हम अमर बन सकते हैं, पर यहां पे बताया गया है कि विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। और सिर्फ वो व्यक्ति को अमर अवस्था प्राप्त होगी जो कि दोनों को जानता है। इसका मतलब क्या है? ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। तो यहां पे ये समझना है हमें कि ये भगवान ने हमें ये भौतिक शरीर दिया है और भौतिक मन और भौतिक बुद्धि दी है। और जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर और मन के सहायता के बिना नहीं हो सकता। अगर आपका शरीर आज आपका साथ नहीं देता तो आज यहां आप प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ पाते। तो इस तरह से अगर हमारा शरीर, मान लीजिए किसी आदमी का पैरालिसिस हो गया है, तो घर में पड़ा रहेगा, उसे सत्संग में आने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से उसके आध्यात्मिक जीवन में अवश्य कोई अंतर तो पड़ेगा ही। इस तरह से ये शरीर का हमें आवश्यकता है, मन सही, मन की स्थिति होना मन की भी आवश्यकता है। तो ये जो वेद शास्त्र हैं ये प्रैक्टिकल शास्त्र हैं, ये ऐसे कोई योजना नहीं देते हमें जो कि बिल्कुल असंभव है। ये वेदों में ऐसे एक संतुलित कार्यक्रम बताए गए हैं जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों साथ साथ चले। अंग्रेजी में कहते हैं मेक अ बैड यूज ऑफ अ बैड बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, यानी जो भी आपके साथ है अभी, क्यों कितना बुरा क्यों ना हो, जो है सो है, उसका तो अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। जितना है, जितना अच्छी तरह से हो सके उतना अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। जैसे आपके पास कोई खटारी गाड़ी है, आप कहेंगे कि अरे काश मेरे पास नई मारुति 1000 होता, कितना अच्छा होता, पर अभी पैसे तो है नहीं, कहां से लेंगे मारुति 1000, पर कम से कम पुरानी 1950 का मॉडल का फिएट तो पड़ा है, कम से कम यहां से बांद्रा गाड़ी में जा तो सकते हैं, तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक मारुति 1000 आएगी हमारे पास हम बैठे रहेंगे और काम नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए भौतिक शरीर जो है ये तो कोई खास ऐसी चीज नहीं, ये तो सिर्फ ये जड़ चीज, जड़ व्यस्ति, जड़ वस्तु है ये, इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है, एक भी अच्छी वस्तु नहीं है, एक भी अच्छा लक्षण नहीं है इस शरीर में। ये सबसे दुनिया में जो भी खूबसूरत व्यक्ति हो कि देखिए अंदर क्या है, कुछ नहीं है, सब गंदगी ही गंदगी है। ये भौतिक शरीर गंदगी है, गंदगी का मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात गंदगी है, पर माया शक्ति की वजह से हम सोचते हैं कि वाह कितना सुंदर है, इतना अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। इसलिए सारे दुनिया में ये शरीर का देखभाल करने के लिए कितने सारे इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए टॉनिक्स हैं, बाल सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए भी टॉनिक्स हैं, आप वृद्धावस्था में आ रहे हैं शरीर पे जो है वो लाइन आ रहे हैं तो उसको सी प्लास्टिक सर्जरी है उसके लिए, और इस तरह से अनेक अनेक तरह के आपके लिए टॉनिक औषधियां वगैरह आपके हैं, आपको खूबसूरत बनाने के लिए वास्तव में एक शरीर क्या खूबसूरत बन सकता है, ये शरीर तो वास्तव सिर्फ जड़ चीज है। इसलिए इसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए और इसको ज्यादा इसको इसकी उन्नति के लिए हमें देखभाल कोशिश नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्या करना चाहिए, ये शरीर का सर्विसिंग करना चाहिए। आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी को आप हर रोज तो सुबह से शाम उसको पॉलिश नहीं करेंगे, पर कम से कम उसको जो पेट्रोल है वो तो डालेंगे, गाड़ी के चक्के में आप हवा डालेंगे, रेडिएटर में पानी डालेंगे, कम से कम एक बार दिन में कोई पोता मार देंगे, उस तरह से कम जो देखभाल चाहिए गाड़ी को चलने के लिए उतना आप करेंगे। उसी तरह से ये भौतिक शरीर है, ये मन है, ये एक वाहन है हमारे लिए, और इसका देखभाल अच्छी तरह से करना है। कितना करना है, जितना आवश्यक है उतना, सिर्फ जितना चाहिए उतना। हाँ, पेट्रोल ना है सिर्फ जितना गाड़ी चलाने के लिए, हम कितना डालते हैं, काफी डाल लेते हैं, टैंक फुल ओवरफ्लो भी हो जाता है फिर भी हम डालने लगते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नाथ यस्येह कर्मभिः, कि जो मन है, मानव जीवन है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनाया है। ये जो मानव जीवन किस लिए हमें दिया है, जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, हमें भगवान के बारे में जानकारी करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है, और इसके अलावा हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह है मानव जीवन का उद्देश्य, ये बताया गया है। तो यहां पे जो अविद्या को जानना, इसका मतलब है कि शरीर का पालन पोषण भी अच्छी तरह से करना चाहिए, और इसके लिए ये शरीर का पालन पोषण करने के लिए थोड़ी बहुत भी जानकारी जो चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आते जाए और आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाए। और यह भी नहीं है कि हम सारे भौतिक शरीर को खत्म कर सकते हैं, ये अविद्या जो है ये एक बुखार की तरह है। जितना इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ती है समाज में, उतना ही अज्ञान का अंधकार बढ़ जाता है, और फिर उतना ही हमारा बुखार जो है, ये सारे समाज का बुखार बढ़ता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और आजकल यही देख रहे हैं, 100 से लेकर 102, 102 से 105, अभी 107 तक आ पहुंचा, एटम बॉम्ब का जो टेम्परेचर है आजकल आ गया है, अभी हर दूसरे देश के पास एटम बॉम्ब है, बड़े बड़े बंदूकें हैं, और ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में से जो विद्यार्थी निकलते हैं, बुद्धिमान बुद्धि वाले व्यक्ति जो निकलते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी बुद्धि किस लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़े बड़े बम बनाने में, ताकि सारे पृथ्वी का नाश जल्दी से जल्दी कर सकें। तो ये सारी दुनिया का फीवर जो है, ये बुखार जो है, बढ़ रहा है। तो हम जो ठीक अच्छे स्वास्थ्य में रहना, इसका मतलब है कि बुखार को कम करना है, बुखार करना है, जब तक नॉर्मल ना आ जाए तब तक करना है। जब नॉर्मल आ जाता है तो उससे ज्यादा कम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा शरीर का टेम्परेचर उसको ही पूरा मिटा दें, ये नहीं है। उसी तरह से ये भौतिक शरीर और मन जो है, इसको सिर्फ अच्छी तरह से स्वास्थ्य अवस्था में रखना है, कम से कम जितना चाहिए। जब ये नॉर्मल है स्वास्थ्य, उसके बाद हमें ना तो ज्यादा इसकी देखभाल करना चाहिए, ना तो इससे कम। इसीलिए योगी जो है, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो वास्तव में योगी होता है, वो ना तो कुछ ज्यादा खाता है, ना ज्यादा पीता है, ज्यादा सोता है, ना तो कम सोता है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, वो कहते हैं कि सब कुछ जो भी आप करते हैं, युक्त आहार, आपका आहार भी बिल्कुल संयम से होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम। युक्त आहार विहार से, आप विहार जो करते हैं, रिक्रिएशन जो करते हैं, वो भी आपको सीमा में करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, आप सोते हैं, कहने का मतलब है जो भी आप कार्य करते हैं वो संयम से करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और जितना आवश्यक है उतना ही। इसलिए शरीर और मन का देखभाल साथ साथ चलना चाहिए, और उसके साथ में आत्मा के विकास के लिए हमें कार्य करने चाहिए। ऐसे अगर साथ साथ में हम चलेंगे तो सारे दुनिया जो है इसमें शांति आ सकती है, और सारे दुनिया का कल्याण हो सकता है, क्योंकि सब लोग फिर भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, विद्या के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में देखिए, मार्ग तो एक ही है, सिर्फ दिशाएं अलग हैं, ये बात समझना आवश्यक है। भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मार्ग एक ही है, पर एक व्यक्ति भगवान की ओर आ रहा है वो मार्ग पे, और दूसरा व्यक्ति भगवान से दूर जा रहा है। बंबई से दिल्ली एक मार्ग है, सीधा नेशनल हाईवे है, और कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर दिल्ली की ओर जा रहा है, और कोई व्यक्ति वही स्थान पे हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जो पाश्चात्य देश है, पश्चिम देश है, वो तो अभी दिल्ली से बहुत दूर है, भगवान से बहुत दूर है, पर वहां से हैरान होकर ये भौतिक जीवन, ये इंद्र तृप्ति का जीवन उन्होंने इतना देखा है, वो जानते हैं कि इसमें कुछ है नहीं अभी, इसलिए उन्होंने अभी दिशा बदली है, और दूर होते हुए भी वो भगवान की ओर अभी आ रहे हैं, बहुत दूर हैं पर इस तरफ आ रहे हैं। और हम हैं यहां भारतवर्ष में, हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, इतने जन्म जन्म से हमारे यहाँ इतने अच्छे संस्कार हुए हैं हमारे लिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलना चाहते हैं, और जो पश्चिम देश है उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान के बहुत करीब हैं, लेकिन उल्टी दिशा में आ रहे हैं, भगवान से दूर भाग रहे हैं, ये दिशा है। इसलिए वो बताते थे कि पश्चिम देश है वो एक अंधे व्यक्ति के समान है, और जो भारतवर्ष है वो एक लंगड़े व्यक्ति के समान है, पर ये लंगड़े व्यक्ति की आंखें हैं अच्छे, तेज आंखें हैं, और वो अंधे व्यक्ति के पैर अच्छे हैं। तो क्या करना चाहिए, लंगड़े व्यक्ति को अंधे व्यक्ति के कंधों पर बैठ के सफर करना चाहिए, फिर जो लंगड़ा व्यक्ति है वो मार्गदर्शन कराएगा कि यहां चलो, यहां चलो, ऐसे चलो, यहां रुक जाओ, यहां खतरा है, वहां से ठीक चलो। और जो अंधा आदमी है, हट्टा खट्टा है, तो देख नहीं पाता, पर जैसे जो लंगड़ा व्यक्ति आदेश देता है वैसे चलता है। तो हट्टा खट्टा होने का मतलब है बहुत भौतिक दृष्टि से उन्नति हो गई है, बट बिल्कुल नहीं है। यहां हमारी भौतिक उन्नति इतनी ज्यादा कुछ है नहीं, पर आध्यात्मिक दृष्टि भगवान की कृपा से अभी तक थोड़ी बहुत है यहां, हालांकि बहुत ही जल्द यहां से भी जा रही है, फिर भी थोड़ी बहुत है अभी। अगर दोनों का मिलन हो जाए तो फिर ये दुनिया का कल्याण हो सकता है, यही ये श्लोक का तात्पर्य है। और ऐसे मार्ग में हम चलेंगे तो फिर हम सच्चे अमर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सारे विद्या का जो मार्ग है, इसको संक्षिप्त में एक श्लोक में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, और वो क्या है? तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। कि हर व्यक्ति को विशेषतः उन्होंने बताया है श्रोतव्य, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनके कथाएं, उनका नाम, उनके उपदेश इत्यादि। श्रोतव्य कीर्तितव्य यानी उनके गुणगान करने चाहिए, और कीर्तितव्यस्य ध्येय उनका स्मरण हमेशा करना चाहिए, और पूज्यस्य उनका पूजन करना चाहिए दिन में 5 मिनट या हफ्ते में एक बार नहीं, नित्यदा। नित्यदा का मतलब है सदैव, हमेशा, हर दिन, हर पल। ऐसा अगर हम हमारे मानव हमारे जीवन को बनाएंगे, कम से कम ये उद्देश्य के लिए प्रयास भी करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, और साथ साथ हम दूसरों का जीवन सफल आने में भी हम मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई आपके प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। वास्तव में अभिमान अहंकार से ही आता है। अहंकार का मतलब है कि मैं ये शरीर हूं ये समझना, वास्तव में ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। और अभिमान यहीं से आता है, हम सोचते देखो मेरा शरीर कितना अच्छा है, मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, मेरे पास कितना धन है। तो अभिमान भी अहंकार पे ही आधारित है, एक सूक्ष्म उसमें अंतर है, ज्यादा नहीं है। वास्तव में सारे बीमारियां सब ये अहंकार पे निर्धारित है, सब कुछ। ये अहंकार अगर मिट जाएगा, अहंकार मिटने का मतलब क्या है, इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं, फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं, मैं प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं ईश्वर हूं। पर सही अहंकार क्या है? भगवान की सेवा करना, ये सच्चा अहंकार है। उसको वास्तव आइडेंटिटी ईगो, यह मिथ्या अहंकार और यह सही अहंकार। क्योंकि अहंकार शब्द उसका मीनिंग हमने वास्तव में उसको मिथ्या अहंकार समझा जाता है, तो सच्चा अहंकार भी होना चाहिए। अहंकार ये भौतिक दृष्टि से नहीं है, ये आइडेंटिटी कह सकते हैं उसको। नहीं, इसकी कोई डर नहीं है। कोई अगर बहुत आध्यात्मिक जीवन की ओर ज्यादा ध्यान दे तो इसमें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, पर कोई भौतिक जीवन की ओर ज्यादा ध्यान दे तो नुकसान हो सकता है। पर हमारी स्थिति यह हो रही है क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे देश में आध्यात्मिक संस्कृति धीरे धीरे से खो गई है, क्योंकि ये जो बाहरी देशों से इंद्रित आक्रमण आ गया है, प्रोपेगेंडा, ये सबसे बड़ा खतरनाक आक्रमण जो है वो सेना के माध्यम से नहीं होता, एटम बॉम्ब के माध्यम से नहीं होता, वो संस्कृति के माध्यम से होता है। यानी जो कल्चर तथाकथित जो अमेरिकन देश में, तो उनका क्या संस्कृति है, कोई कल्चर नहीं है उनका। देखिए उन्हीं की संस्कृति यहां आ रही है। आजकल के नौजवान जो हैं, नवयुवतियां जो हैं, उनकी आप रहने सहने का ढंग देखिए, किस तरह से उनकी क्या विचारधाराएं होती, किस तरह से अपने जीवन में उद्देश्य रखते हैं। क्योंकि हम आध्यात्मिक पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे पास संस्कृति होते हुए भी हमने उसको बनाए नहीं रखा, उसको शक्तिशाली।
हाँ,
क्यों वीकनेस है? क्योंकि मान लीजिए आप आपके शरीर में कोई जर्म्स आते हैं, आक्रमण करते हैं, अगर आपका बॉडी रेजिस्टेंस सही है तो आप कर पाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपके शरीर में और शरीर का देखभाल ठीक से नहीं किया है, तो देखभाल ठीक से नहीं किया, ये आध्यात्मिक संस्कृति का जो विद्या को सब जगह फैलाना, इसके जड़ अच्छी तरह से सब सारे जगहों में उसको बिठाना, ये ठीक से नहीं किया। इसीलिए तो ये पेड़ जो है इनका जड़ ठीक नहीं है, इसलिए जब तूफान आते हैं बाहर से तो उखड़ देते हैं उसको। हमने जड़ को या आध्यात्मिक जड़ को, आध्यात्मिक विद्या या ये पद्धति को या विधि को हमने ठीक से जल नहीं दिया, ठीक से देखभाल नहीं किया इसका, इसलिए अभी जब बाहर से भौतिक तूफान चले आ रहे हैं तो अभी डगमगा जा रहे हैं सब हमारे पेड़, आध्यात्मिक जीवन के पेड़। ये असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि आजकल कलयुग में ज्यादा से ज्यादा लोग असुरी भाव के हो रहे हैं, भगवान में नहीं मानते, अपने आप को भगवान मानते हैं और अपने आप को भोक्ता मानते हैं, इसलिए ये प्रवृत्ति आ जाती है, भोग की प्रवृत्ति। इसीलिए हमें भक्तों का संग हमेशा करना चाहिए, भक्तों का संग करने से भोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है और दासत्व की भावना जो है हमारे हृदय में आ जाती है। दासत्व की भावना के बिना ना तो भक्ति में प्रगति हो सकती है, ना तो कोई भी हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, क्योंकि पागल व्यक्ति हमेशा दूसरे को ही पागल समझता है ना? सही बात है ना? वो जो सच्ची पागल है वो तो सारे दुनिया को पागल ही समझता है, वास्तव में खुद पागल है। उसी तरह से जो अज्ञान में पड़ा हुआ आदमी है, अज्ञान के अंधकार में जो है, उसकी तो आंखें बंद है, दृष्टि उसकी नहीं है, वो कैसे पहचानेगा कि क्या सही है क्या गलत है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च आसुरम नयते आसुरम। वो कहते हैं कि जो असुरली लोग हैं उनको प्रवृत्ति निवृत्ति सही क्या है गलत क्या है, इसकी कोई मतलब उनका कोई विचार ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इसके बारे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञान की वजह से ये लोग ऐसा बोलते हैं, अज्ञान आदमी को पागल बना देती है। दोनों एक ही बात है। हरे कृष्ण आपके बहुत।